السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورة القوثر سے سٹارٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنا آج کا جو ٹارگیٹ ہے وہ مکمل کر سکیں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة القوثر مکی سورت ہے. اس کا نام اس کے پہلی آیت اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 15 ہے. مصحف میں تو 108 نمبر ہے، لیکن شروع کی سورتوں میں سے ہے، اور ابن عباس نے یہی فرمایا ہے کہ یہ مکی سورت ہے. اور بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سورت دو دفعہ نازل ہوئی ہو. مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کو اونگ آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مسکراتے ہوئے اپنا سر بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے یہ سورت تلاوت فرمائی. آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت آئے گی، اس کے برتن ستاروں کے تعداد کے برابر ہیں، اس پر ان میں سے ایک بندہ وہاں سے نکالا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرا امتی ہے، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے اس نے آپ کے بعد دین میں کیا نیا کام نکالا. تو یہ مسلم میں بھی، ابو داود میں بھی، نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو اس سورت کو جو اس کا نام ہے الکوثر ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بخاری میں اس کا ایک اور نام ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اسی طرح اس کا ایک تیسرا نام سورت النحر بھی ہے. نحر اونٹ کو کیا جاتا ہے، اونٹ کو ذبح کرنا نہیں کہتے، نحر کرنا کہتے ہیں، اور اس کو عربوں نے اپنے ہاں بہت بڑی سخاوت کی علامت سمجھا ہوا تھا کہ جب وہ بہت زیادہ کچھ کرنا چاہتے تھے تو اونٹ نحر کرتے تھے، کیونکہ اونٹ کے گوشت سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ وہ سورت ہے جو قرآن کریم کی سب سے مختصر سورت ہے، یعنی سب سے چھوٹی سورت اور سب سے کم الفاظ اس کے اندر ہیں. اور ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی، تو اس وقت کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. یہ سورت سمجھ لیں پچھلی جو سورتیں آئی ہیں ان کو مکمل کرتی ہے، کیونکہ پچھلی سورتیں سورت الدحیٰ آپ دیکھ لیں، سورہ اشرح دیکھ لیں، دحیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمائی ہے، اور سورت الشرح میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ کر دیا، آپ کا بوجھ اتار دیا، تو آپ کو بشارت دی گئی. اس کے علاوہ سورت تین میں آپ کے شہر کی قسم کھائی گئی اور آپ کی امت کے لیے جہنم سے نجات کی بشارت دی گئی. سورہ علق میں بھی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تکریم دی گئی قرآن کی بارے میں यानी कुरान आपको पर नाजिल किया गया है। और सूरत अल कदर में आपकी उम्मत के लिए देखें फजीलतें शब्बे कदर की, वो इतनी बड़ी खुशखबरी है वो दी गई। सूरत अल बय्यिना में भी आपकी उम्मत के लिए फजीलतें हैं कि आपकी उम्मत को सारी मखलूक से ज़्यादा बेहतर बनाया गया है और उनके लिए सवाब है। और सूरत अल जिलजाल में आपकी उम्मत के लिए फजीलतें हैं क्योंकि जब ज़मीन गवाही देगी उनके हक में और एक एक उनकी नेकी तुलेगी। तो ये सारी सूरतें, अभी वक्त नहीं है कि हम सब सूरतों में जाएं, लेकिन जैसे सूरह फील, सूरह कुरैश में भी आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह ताला ने आपके दुश्मनों को उनकी साजिश को नाकाम किया, जो सूरह फील में आए थे इस घर को ख़त्म करने के लिए, और सूरह कुरैश में आपके कबीले को जो अल्लाह ताला ने फजीलतें दी वो हैं। तो इस तरह इन सारी सूरतों को अब समझ ले तमाम किया जा रहा है कि जब सूरत कौसर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई और कौसर कह के अल्लाह ताला ने जो भी फजीलतें अजीम फजीलतें आपको दी हैं, हर फजीलत उनमें दुनिया और जो कुछ दुनिया में उस सबसे ज्यादा अफजल है। अब आपको काफरों ने क्या कहा और किस तरह से मजाक उड़ाया और अल्लाह ताला ने आपको किस तरह से डिफेंड किया इस सूरत के अंदर, ये आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह से आपके दिफा के लिए अल्लाह ताला खुद अल्लाह ताला ने कुरान उतार दिया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ऐसा कहा था। अब ये सूरत देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल कौसर। सबसे पहले तो हम कौसर के बारे में देखें कि कौसर क्या चीज़ है, और जब हम हौज़े कौसर कहते हैं तो ये क्या है और ये कब मिलेगा और कौन इसे पिएगा और कौन इसे महरूम होगा। तो कयामत के दिन जब लोग मैदाने महशर में जमा होंगे, उस दिन ये ज़मीन बदल के एक और ज़मीन लाई जाएगी जिस पे ना कोई टीला होगा, ना पहाड़, ना दरख्त, ना कोई झाड़ झंकार, सिर्फ 2 कदम रखने की जगह होगी और सूरज बहुत करीब होगा। लोग पसीने में शराबूर होंगे, उस वक्त ना कोई हिलेगा, ना कोई बोलेगा, कोई हरकत नहीं होगी, सिर्फ हम्स होगी यानी सांस की आवाज़। और लोग इस कदर ज़्यादा प्यासे होंगे, प्यास की शिद्दत की वजह से बेहाल होंगे, उस वक्त हशर के मैदान में एक हौज होगा, पौंड जिसको कहते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी का एक हौज होगा और हर एक अपने हौज पर खड़ा होगा और उनके उम्मती उनके हौज पर जाएंगे और नबी आपस में इसमें मुकाबला करेंगे कि किसके हौज पर ज्यादा लोग हों, और मुझे उम्मीद है कि मेरे हौज पर सबसे ज्यादा उम्मती होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर फख्र करते हैं कि आपके उम्मती सबसे ज्यादा होंगे। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इस उम्मत में इजाफा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और ज्यादा तादाद में बढ़े। अब ये कहाँ पे होगा ये हौज? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है, जिसको हम कहते हैं ना रियाजुल जन्ना, जब आप मदीना जाते हैं तो जन्नत के बागों में से एक बाग है। क्या मतलब है? यानी ये जब दुनिया खत्म हो जाएगी ना, तो ये टुकड़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और मिंबर के दरमियान है, ये असल में जन्नत का टुकड़ा है, ये जमीन का नहीं है। तो ये टुकड़ा जन्नत में वापस चला जाएगा, जहां से जैसे आप पजल में देखते हैं ना पीसेस होते हैं, तो कोई एक पीस कहीं मिसिंग हो तो समझ लें कि ये जमीन के ऊपर है टुकड़ा जो है असल में जन्नत का बाग। अब लोग बस इसको डिफरेंट चीजें समझते हैं, वो समझते हैं मैंने इतनी दफा रियाजुल जन्ना चली गई तो पता नहीं कितनी बड़ी मेरी सआदत हो गई या क्या है, पता नहीं उसको कुछ और समझ लेते हैं। हालांकि इसकी फजीलत क्या है कि ये जन्नत है, समझ लो जमीन के ऊपर जन्नत का एक टुकड़ा, और पूरी जमीन पे कोई ऐसी जगह नहीं है जो जन्नत का टुकड़ा हो, और ये वापस जन्नत में चला जाएगा। और आगे हदीस में, और मेरा मिंबर मेरे हौज पर होगा। अब इसके 2 मतलब हैं, एक मतलब क्या कि क्यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिंबर होगा जो इस हौज़े कौसर पर होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खड़े होंगे और अपनी उम्मत को वहां से देखेंगे। दूसरा इसका मतलब है कि जिस मिंबर पे मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे वो उस दिन लाया जाएगा और वो हौज़ पे रखा जाएगा और वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को देखेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि एक दफ़ा का जिक्र है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और फिर आप मिंबर पर गए, फिर फरमाया मैं हौज पर तुम्हारा पेश रो हूंगा, यानी मैं सबसे पहले वहां पे हूंगा और मैं तुम्हारे हक में गवाही दूंगा और बेशक अल्लाह की कसम मैं अपने हौज को अब इस वक्त देख रहा हूं और बेशक मुझे रुए जमीन के खजानों से चाबियां दी गई और बेशक अल्लाह की कसम मुझे तुम पर यह खौफ नहीं है कि मेरे बाद तुम मुशरिक हो जाओगे, लेकिन मुझे तुमसे ये खतरा है कि दुनिया में रगबत करोगे। ये बुखारी की हदीस है, यानी तुम दुनिया के पीछे दीवाने हो जाओगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पता चला कि हौज इस वक्त भी मौजूद है और आपने फरमाया मैं हौज को देख रहा हूं। तो कौसर फिर क्या है? अगर ये हौज है, हौजे कौसर है, तो कौसर क्या है? कौसर के बारे में फरमाया गया कि कौसर एक नहर है जो जन्नत में है, जिसकी साइड्स जो हैं वो सोने की हैं, उस नहर की जो किनारे हैं वो सोने के हैं और इसमें मोती और याकूत जारी हैं। इसकी मट्टी मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है और इसका पानी शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा सफेद है। यानी जैसे नहर के अंदर कंकर होते हैं ना, पत्थर होते हैं, तो उसके जो पत्थर हैं वो मोती और याकूत हैं और पानी उसका कैसा है और उसकी मट्टी कैसी है। अल्लाह अकबर। तो ये हमें पता चलता है कि वो एक नहर है और उसके किनारे के बारे में भी पता चलता है कि दोनों तरफ हौलदार, जैसे हॉलो होता है ना, अंदर से हॉलो हो कोई चीज, उस हौलदार मोती के खेमे हैं इसके दोनों तरफ। और आप देख लेंगे कीमती पत्थर हैं इसके अंदर। और फिर ये तो नहर है जो जन्नत में है और हौज जो है वो मैदान-ए-माशर में है, तो इसका मतलब उस जन्नत का पानी यहाँ पर यानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी चीज के जरिए, कौसर से पानी आ रहा है हौज के अंदर। तो कोई चीजें होंगी जिनसे पानी यहाँ पे भरा जाएगा, मगर होगा वो नहरे कौसर का पानी, इसीलिए यह हौजे कौसर है। अब ये हौज कितना बड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हौज के फासला इतना है जितना काबा और बैतुल मकदस के दरमियान है, इतना फासला कि घुड़सवार एक महीने की मसाफत से चलता रहे तो वो तेज रफ्तार हो, एक महीने की मसाफत से चलता रहे तो तब वो इस हौज तक पहुंचेगा, यानी इस हौज की लंबाई चौड़ाई इतनी है तब वो कवर करेगा। इतना बड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये हौज अता फरमाया। और फिर हम देखते हैं कि जो एक दफा इससे पानी पी लेगा उसको कभी दोबारा प्यास नहीं लगेगी। और इसका हमें हदीस से भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि जिसने हौजे कौसर से एक दफा पानी पी लिया इसके बाद उसको कभी प्यास महसूस नहीं होगी। यानी अब जन्नत में जाके वो जो नेमते डिफरेंट चश्मे और शराब और ये सब नेमते उसको मिलेंगी, तो वो इसलिए नहीं पिएगा उनको कि उसको प्यास लग रही होगी, बल्कि वो लज्जत के लिए होगा। तो वरना ये पानी पी लिया तो उसके बाद थ्रू आउट जितना मैदाने माशर का टाइम है उसमें उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। और फरमाया उसका चेहरा कभी स्याह नहीं होगा, और आपको पता है उस दिन रोशन चेहरे वाले जो होंगे वो कितने कामयाबी की ये कलामत है कि लोगों के चेहरे रोशन होंगे, वही लोग जो कामयाब हो रहे होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खड़े होंगे। और अलबत्ता ये बात जो मशहूर है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से हौज़े कौसर पिलाएंगे, उसकी कहीं दलील नहीं मिलती, किसी सही हदीस में नहीं है ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पिलाएंगे, बल्कि यही पता चलता है वहां पे प्याले होंगे जिससे लोग पिएंगे। तो दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह अपने नबी के हौज का पानी हमें नसीब फरमाना। और आप इमेजिन करें इस बात को कि सुभान अल्लाह, वो पहली जगह होगी जहां पर आपकी मुलाकात अपने नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फेस टू फेस होगी। फर्स्ट टाइम आप उनकी जियारत करेंगे हौज़े कौसर पर, सुभान अल्लाह। और कौन सबसे पहले से पानी पियेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हैं वो सबसे पहले पानी पियेंगे। और वो कौन है? आपको पता है कि जो लोग शुरू के इस्लाम लाने वाले, पहले तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर, अली, उस्मान, ये सब सहाबा कराम मुहाजिरीन, और उसके बाद अंसार। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे हौज पर सबसे पहले जो लोग आएंगे वो फुकरा मुहाजिरीन होंगे, गर्द आलूद, सार मैले कुचैले कपड़े, नाजो नाम में पली हुई औरतों से निकाह करने की इस्तात ना रखने वाले, और जिनके लिए उमरा के यानी अमीर लोगों के दरवाजे नहीं खोले जाते थे। अल्लाह अकबर। और अंसार को आपने फरमाया कि ए जमाते अंसार, मेरा तुम्हारे साथ हौस पर मिलने का वादा है, सुभान अल्लाह। और वो शख्स बड़ा ही महरूम होगा जो इस हौस से पानी ना पी सके। उस शख्स के बारे में आपने फरमाया उससे वो महरूम रहा, वो कभी सराब नहीं होगा जिसको इस हौज से पानी ना मिले। क्योंकि जो एक दफा पी लेगा उसको तो कभी प्यास नहीं लगेगी, और जो महरूम रहेगा वो कभी सराब ही नहीं हो सकेगा, कभी भी नहीं उसकी प्यास बुझेगी। तो जो लोग काफिर होंगे उनको तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हटा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं हौस से इस तरह हटा दूंगा उनको जिस तरह ऊंटों का मालिक दूसरे ऊंटों को हटा देता है। तो लोगों ने पूछा या रसूल्ला, क्या आपको कैसे पहचान होगी कि भाई वो काफिर हैं या ये मुसलमान हैं, आपके उम्मत ही हैं? आपने फरमाया तुम मेरे पास आओगे तो वुजू की वजह से तुम्हारे हाथ पैर और पेशानियां चमक रही होंगी, ये सिफत तुम्हारे अलावा किसी दूसरी उम्मत में नहीं होगी, और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से पहचान लेंगे। इसी तरह कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझेंगे कि ये मेरे उम्मत ही हैं, तो उनको भी हटा दिया जाएगा। वो कौन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हौज़े कौसर पर खड़ा होऊंगा, लोगों की एक जमात मेरे सामने आएगी, मैं उन्हें पहचान लूंगा कि ये मेरे उम्मत ही। इतने में मेरे और उनके दरमियान एक शख्स आ जाएगा जो अल्लाह का फरिश्ता होगा, वो इस जमात से कहेगा उधर आओ, मैं कहूंगा इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, वो कहेगा जहन्नुम में, वल्लाही उन्हें मैं जहन्नुम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। मैं पूछूंगा उनका जुर्म क्या है, वो जवाब देगा आपके बाद ये लोग एड़ियों के बल दीन इस्लाम से फिर गए थे। क्या मतलब? मुर्तद होने वालों को हौज़े कौसर का पानी नसीब नहीं होगा। कभी मुसलमान थे लेकिन उसके बाद वो मुर्तद हो गए, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, तो वो कभी भी हौस का पानी उनको नसीब नहीं होगा। फिर एक दूसरी जमात मेरे सामने आएगी, हत्ता कि मैं उनको पहचान लूंगा कि ये मेरे उम्मती हैं। इतने में मेरे और उनके दरमियान एक आदमी हायल हो जाएगा और कहेगा इधर आओ, यानी हौज़े कौसर से उलट तरफ बुलाएगा। मैं कहूँगा तो इनको कहाँ ले जा रहे हैं, कहेगा जहन्नुम की तरफ, अल्लाह की कसम इन्हें मैं जहन्नुम की तरफ ले जा रहा हूँ। मैं पूछूंगा इनका जुर्म क्या, वो कहेगा ये लोग आपके बाद उल्टे पांव इस्लाम से फिर गए थे, मैं समझता हूँ लावारिस ऊंट की तरह इनमें से कोई भी जहन्नुम से नहीं बचेगा। जिस तरह लावारिस ऊंट के ऊंटों के बाड़े में चला जाए और वो लेकिन लावारिस है, इसी तरह मुर्तदों का कयामत के दिन कोई वाली वारिस नहीं होगा। और दूसरी, आपने अभी शुरू में यह हदीस सुन ली कि वो लोग जिन्होंने बिदात की होंगी उनको भी हटा दिया जाएगा इस हौस से। और फिर तीसरे कौन लोग हैं जिनको हौज से हटाया जाएगा? तीन तरह के लोग, एक आपने सुन लिया मुर्तदीन, दूसरे आपने सुन लिया वो लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बिदात शुरू करनी, ये कोई छोटी बात नहीं होती। लोग कहते हैं ना इससे क्या फर्क पड़ता है, तो हम अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, नेकी का ही काम कर रहे हैं ना। नेकी सिर्फ वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि ये नेकी है, उसके अलावा आप किसी अमल को खुद से समझ लें कि ये नेकी का अमल है, आप खुद से नहीं किसी चीज को डिफाइन कर सकते कि ये भी हमने एक रस्म निकाल ली, वो भी हमने एक ईद मना ली, वो भी हमने एक नया काम शुरू कर दिया। अब कोई कहे भाई ये भी तो नेकी ही है ना, तो क्या हो गया इस रात को खास करके मैं इसमें इबादत करूं, ये खास बड़ी बरकतों वाली रात है। आपने कहां से जान लिया, आपने कहां से ये कह दिया? तो ये चीजें खुद से बनानी ये बहुत बड़ा गुनाह है, बिदअत इसी को कहते हैं। नई नई चीजें दीन में इजाद कर लेना, यानी वो पहले ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, ना आपने कुछ उसके बारे के अंदर कोई फजीलत दी, लेकिन आपने उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। या बाज़ लोगों ने कहा हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी उस दिन हशर के मैदान में शिफात कर रहे होंगे, उनको किसने इतला दी कि खास उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है क्या? तो ये चीजें फिर खुद से ईजाद कर लेना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह तीसरे कौन लोग होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर, अब्दुल्ला बिन खब्बाब अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हम बैठे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे, तो आप तशरीफ लाए और फरमाया सुनो, हमने अर्ज किया हम सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपने फरमाया सुनो, हमने दोबारा अर्ज किया हम सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपने इरशाद फरमाया मेरे बाद हुक्मरान आएंगे उनके झूठ की तस्दीक ना करना और उनके जुल्म पर इनकी मदद ना करना, यानी उनके साथ ना खड़े हो जाना, बेशक जिसने उनके झूठ की तस्दीक की और इनके जुल्म पर तावुन किया वो हौज पर नहीं आएगा। बहुत ज्यादा केयरफुल रहें कि आप किसके साथ खड़े होते हैं, इससे बेहतर है कि आप किसी का भी साथ ना दें बजाय इसके कि आप किसी के साथ दे के और उसके जुल्म में शरीक हो जाएं। तो ऐसे लोग भी हौज पर नहीं आएंगे जो ऐसे हुक्मरानों का, जो जालिम हुक्मरान है उनका साथ देते हैं, उनके साथ ताबुन करते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। आज करप्ट सियासतदान देखें, उनका लीडर जो भी करता रहे वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उस वो झूठ बोले सच बोले कुछ भी कहे कहते हैं ये सच्चाई है। तो इसलिए एक तो ये चीज, और दूसरा अकीदे के अंदर, देखिए ये जो बिदत की मैंने आप बात बताई ना, बिदत अकीदे में भी होती है और इबादत में भी होती है। अकीदे में बिदतें, मैंने जैसे आपको बताया था कि अकीदा तकदीर के बारे में, जो अकीदा इंसान का है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, मसलन तकदीर का, इसी तरह अल्लाह ताला के बारे में, उसकी असमाओ सिफात के बारे में, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। बाज़ लोग इसी के ऊपर झगड़ते रहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा हैं, अभी भी जिंदा बैठे हुए हैं, अपनी कब्र के अंदर बैठे हुए हैं, अपनी बीवियों से भी मिलते हैं, ये अकीदे कहाँ से ले लिए? तो इसलिए अकीदे में क्या आपने करना है, सिर्फ एक चीज़ को आप याद रखेंगे ना तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अकीदा हमने कहाँ से लेना है, या तो कुरान से या सुन्नत से, और इसके बाद कोई बात नहीं समझ आ रही असलाफ से ले, यानी जो तीन जनरेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आई जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खैरुल कुरून है, बेहतरीन जमाने हैं, सहाबा ताबईन और तबा ताबईन, बस। और इबादात के अंदर आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखना है, सहाबा के तरीके को देखना है, आप तो आसानी हो जाएगी। अरे सिर्फ ये ना सोचें कि बस हमने नमाज रोजा कर लिया बस हम तो बचे में, देखें याद रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खबरदार किया था किन के बारे में, खवारिज के बारे में, और फरमाया था उनकी नमाजें ऐसी होंगी कि तुम अपनी नमाजों को उनके मुकाबले में हल्का समझोगे, सहाबा को फरमाया, और उनके रोजों के मुकाबले में अपने रोजों को कमतर समझोगे, लेकिन वो दीन से ऐसे निकल गएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता। अरे वो ऐसे उन्होंने दीन में क्या क्या नई नई चीजें निकाल ली थी, हालांकि नमाजें बहुत पढ़ते थे, तो किसी की नमाजों से उसके रोजों से इससे मत मुतासिर हो जाएं। ये देखें जो आपको सही बात बता रहा हो, जो बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, तो ये है ये सूरत। और इस सूरत का थीम क्या है, इस सूरत का थीम है अल्लाह ताला ने आपको जो गिफ्ट्स दिए हैं, तीन ही आयतें हैं ना, अल्लाह ताला ने जब काफरों ने आपको फरमाए काफरों ने आपको कहा तुम अबतर हो, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आपका दुश्मन अबतर है, आपके लिए तो खैरे कसीर है, आपको तो अल्लाह ताला ने इतना अता कर दिया और आप इसके बाद क्या करें। आयत 2 जो है आयत 1 से भी जुड़ी हुई और आयत 3 से भी जुड़ी हुई, देखते हैं कैसे। मगर पहले थीम को आप देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतना अता कर दिया, इन्ना बेशक हमने, इन्ना जब बेशक आ गया तो अब अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने बेशक, यानी कोई चीज इसके अंदर शक वाली है ही नहीं, गारंटीड है ये बात, आ तो ही ना, हमने अता कर दिया। का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल कौसर, कौसर अल्लाह ताला ने आपको दे दिया कौसर। तो देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफात हुई, गम तो था उसका, जाहिर है इंसान को अपनी औलाद के जाने का गम होता है, लेकिन ये देखें कि अल्लाह ताला आपको क्या कुछ दे रहा है, आप उसकी तरफ नजर रखें। सुभान अल्लाह, ये सूरह तो दुहा में भी आपको देने की बात आई, सूरह शराह में भी देने की बात आई, लेकिन यहां पर जो कुछ दे दिया गया, इतना कुछ दे दिया गया कि दुनिया और आखरत की सारी भलाइयों से बढ़कर एक एक लफ्ज में अलकौसर कह के सारी बात बता दी गई। तो पहले तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने अगर कुछ वापस लिया तो इसके बदले में क्या कुछ अता कर दिया। जिंदगी में याद रखिए, अगर कोई चीज हाथ से चली जाए, कुछ खो जाए और आप सब्र करके देखें, तो अल्लाह ताला वो चीज अता करेगा कि जो आपने सोची भी नहीं होगी। अल्लाह ताला अगर कुछ लेता है और इंसान सब्र करता है और अल्लाह ताला के बारे में अच्छा गुमान रखता है, तो अल्लाह ताला कॉम्पेंसेट कर देता है, कुछ और दे देता है। अच्छा, यहाँ पे इन ना हमने, हम का लफ्ज आया, हम का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला तो एक है तो यहाँ पे हम क्यों आया। आप देखें जहां पे नेमतों की बात आती तो कुरान में हम का लफ्ज आता है, जिसको रॉयल वी कहते हैं। जैसे हम अपने लिए जब कोई कुछ लोग कहते हैं ना, हर चीज की बात मैं नहीं कहते, हम ही कहते हैं, तो एक रॉयल रॉयल्टी उसके अंदर जाहिर होती है हम के लफ्ज में। तो आप नोट करिएगा, जहां जहां नेमतों की बात आई तो हमने अता किया। इन्ना अनजलनाहू, देखें अनजलना में भी हमने नाजिल किया। लेकिन याद रखिए कुरान करीम में जब इबादत की बात आएगी ना, कभी जमा का लफ्ज नहीं आएगा, कभी ये नहीं आएगा हमारी इबादत करो। इन्नानी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी वाकीमिस्सलाह। तो आप देखें अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, ये आप इसमें अना की बात आई। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, यानी नी है उसके भी एंड में, मेरी इबादत करें। तो ये एक फर्क समझ लें। दूसरा आतीना, हमने अता किया। अता के लफ्ज के अंदर एक माना तो ये कि बहुत ज्यादा देना, अता में जैसे कहते हैं ना अता कर दिया। नंबर 2 इसमें ये भी माना होता है कि अनकंडीशनल दे दिया, कोई शर्तें नहीं है कि अच्छा ये करोगे तो ये फिर मिलेगा, नहीं, अता ऐसे ही होती है। और फिर पूरी तरह दूसरे को मालिक बना देना, उसे लेंगे नहीं आप वापस। तो यहाँ पे युआती का नहीं आया जैसे पहले आया था, युआती का रब्बू का देगा आपको आपका रब, लेकिन यहाँ पे आया आतीना। क्या फर्क है, आतीना माजी है, युआती का मुजारे है। माजी तब आता है जब ये हो जाए कि ये तो हो चुकी बात, ये यकीनी बात है इतनी कि जैसे हो चुकी, जैसे आप देखते हैं कयामत के लिए माजी का ही लफ्ज आता है, तो जो भी काम माजी में हो चुका वो अब चेंज तो नहीं हो सकता ना, वो यकीनी हो चुका है अब तो। वो तो अल्लाह ताला दे चुका है आपको, दे दिया उसने, सुभान अल्लाह। और ये एक अदब भी देखें यहाँ पे, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दिया है तो आतीना का सीगा आपको मुखातिब करके दिया, और जब आप पर कोई सरजनश की है कि आपने ये नहीं करना, तो फिर कैसे आया था? आबा हुआ था वल्ला, उसने तेवरी चढ़ाई और मुंह मोड़ा, उसने कहा थर्ड पर्सन में, सुभान अल्लाह, डायरेक्ट नहीं कहा, जिसको अल्लाह ताला ने इतना अदब दिया हो, इतने अदब से पुकारा हो कि कभी या मोहम्मद ना कहा हो, फिर उनके लिए हमें कितना अदबो एहतराम करना चाहिए, हमारे लिए कितना है कि हम उनके लिए जब बात करें, उनकी बात करें तो कितने एहतराम के साथ करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नाम लिया जाए तो दुरूद पढ़ के लिया जाए। बाज लोग कहते हैं हजरत मोहम्मद ने ऐसा कहा, काफिर तो कहें आप तो ना कहें ना, जिनका नाम अल्लाह ताला ने ऐसे ना लिया, आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? अपने माँ बाप का नाम आप ऐसे ही लेते हैं? अपनी माँ का नाम ऐसे लेते हैं? तो जिनको हम एहतराम देते हैं ना, उनके आगे पीछे भी बड़ा कुछ लगाते हैं कि मसलन है कि इमाम बुखारी रहिमहुल्ला, इमाम भी लगाएं, या किसी के साथ शेख लगाते हैं किसी के, तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए तो आपको फिर दुरूद के साथ ही बात करनी चाहिए ना, और उनका नाम लिए बगैर। तो एटिकेट्स हैं ये जो हम कुरान से लर्न करते हैं, और किसी और के लिए भी ये याद रखेंगे, किसी को भी किसी चीज की तरफ तवज्जो दिलानी हो ना, तो बेहतर है कि थर्ड पर्सन में बात की जाए, खास तौर पे जिसको आप अदब और एहतराम करते हो, तो उसको खुद ही समझ आ जाएगी, जब आप कहेंगे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं तो खुद ही उसको समझ आ जाएगी। तो आप देख लें सूरत दुहा से लेकर यहाँ तक मुसलसल किसी ना किसी नेमत का जिक्र आया, और यहाँ पर आकर सारी नेमतों से ज्यादा एक बड़ी नेमत का जिक्र आ गया कि अल्लाह ताला ने आपको कौसर अता फरमाई है। एक लफ्ज में सारा कुछ ही दे दिया। कौसर किससे है? जैसे आप कहते हैं ना कसीर, कसीर तादाद में, उर्दू में भी हम बोलते हैं कसरत बोलते हैं उर्दू में, क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा का माना होता है ना कसरत में। तो अब कसरत किसी भी चीज की हो सकती, शर की भी और खैर की भी, लेकिन जब आप अता की बात करते हैं तो उसमें खैर ही होती है ना। अता किया, किसी को बुरी चीज तो कभी भी नहीं अता होती, उसके लिए अता का लफ्ज नहीं आता। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको कसरत अता की, भलाई की यानी खैर की कसरत आपको दे दी। और एक माना कौसर का, वो हौजे कौसर भी है, नहरे कौसर भी है, और बहुत सारी मुरादें इसे ली गई। जब खैरे कसीर कह दिया गया, बहुत ज्यादा खैर, तो इससे मुराद क्या है, कौन सी खैर? तो इब्ने अब्बास कहते हैं अल्लाह ताला ने हर खैर आपको दे दी, इस्लाम भी खैर है वो दिया, कुरान, नबुव्वत, दुनिया और आखरत में आपकी तारीफ और तहसीन और आपकी सना और जन्नत की भी नेमतें, और फिर इसी तरह अहकाम शरईया को आपके लिए आसान कर देना, आपकी उम्मत की कसरत और आपके जिक्र की बुलंदी, कि जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाए वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अजान में भी आता है। सबसे पहले तो कोई शहादत लेता है, कलमा शहादत पढ़ता है तो उसमें भी आता है, अजान में भी आता है, इकामत में भी आता है, तशहुद में भी आता है, फिर आपको किबला बैतुल्लाह आपको अता फरमाया अल्लाह ताला ने, फिर मकाम महमूद एक बंदे को मिलेगा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और वसीला जो जन्नत में सिर्फ एक ही दर्जा है और सबसे बुलंद है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा, फिर शिफात मिलेगी, फिर आपको 5 नमाजें दी गई जो 50 के बराबर हैं, और आपको ऐसे सहाबा दिए गए, तो बहुत सारी नेमतें हैं जो आपको मिली हैं। यानी देखिए ना, एक बंदा जब सोचे, इमेजिन करें, एक बंदा गमगीन हो रहा है किसी की बातों से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफात हुई, तो चूंकि अबू लहब का घर बिल्कुल साथ था, ऐसे साथ था कि दीवार बीच में एक ही थी, तो सारी बातें पता चलती थी, तो जब वफात हुई उनकी तो अल्लाहु अकबर, वो खुशी से नारे लगाते हुए बाहर निकला और चीखता जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर हो गए, अबतर हो गए। तो अब देखिए, ये एक आदमी की तरफ से जब ऐसी बात हो, तो एक तो औलाद का दुख और गम, अब आपके कोई भी बेटा नहीं रह गया था, तो एक वो गम और दूसरा ये कि दुश्मन खुशियां मना रहा है, मुखालिफ और ज्यादा यानी अपनी मुखालफत में और इसमें और ज्यादा, और इस चीज के ऊपर जो पहले भी मजाक उड़ाया करते थे, इस पे इनको और एक मौका मिल गया मजाक उड़ाने का और बातें करने का कि देखो इनका कौन। अब तक उसको कहते थे जो दुम कटा जानवर होता है ना, उसको कहते हैं, और उसके बाद अरब किस चीज को कहने लगे, यानी अब इसके बाद इसकी कोई नस्ल नहीं चलेगी, इसका नाम नहीं चलेगा, क्योंकि बेटों से नस्ल चलने का सिलसिला होता है, तो जब बेटे ही नहीं रहे तो इनकी नस्ल कैसे आगे चलेगी। तो ऐसे वक्त में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन है, अल्लाह ताला इतना बड़ा गिफ्ट दे रहा है, देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। दूसरे अंबिया को लोगों ने कही बातें, बहुत सारी बातें कहीं कहीं आप देखते हैं कि किसी नबी को उन्होंने कहा कि आप सफी हैं, आप किसी नबी को कुछ कहा, यानी नूह अलैहि सलाम को कहा आप दलाले मुबीन पे हैं, और इसी तरह हूद अलैहि सलाम को उन्होंने कहा कि ए हूद हम तो आपको इन्ना लना रौका फी सफाहते ना, आपको बेवकूफी में देखते हैं। हूद अलैहि सलाम को भी इस तरह की बातें की। तो पिछले अंबिया पे भी लोग बातें करते रहे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुफ्फार ने इस तरह की बातें की, आपकी शान में बदगोई की, तो अल्लाह ताला ने ये गवारा नहीं किया कि आप खुद उनको जवाब दें, बल्कि अल्लाह ताला ने आपकी शान में खुद आपका दिफा किया और आपके लिए आपकी शान के खिलाफ कोई बात कही गई तो उसको रद्द किया अल्लाह ताला ने खुद। तो अब आप डिप्रेस ना हो, आप गमगीन ना हो, आपको तो अल्लाह ताला ने खैर कसीर दे दी। देखें आपका नाम आज तक जिंदा है और चलता रहेगा, और सिर्फ नाम नहीं, आपके ऊपर मर मिटने वाले कैसे लोग हैं। आपने फरमाया था ना कि कुछ लोग ऐसे आएंगे कि वो मेरी एक झलक देखने। कि वो मेरी एक झलक देखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए। तो अल्लाह ताला ने आपको तो इतनी खैर कसीर दे दी, आप इनके ऊपर गम ना करें, ये अगर आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो देखो अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या रखा हुआ। तो इसमें हौज़े कौसर भी आ गया, इसमें खैर और बरकतें और भलाइयों की जो मैंने आपके सामने सारी रखी वो सब आपको अता की गई, और कसरत उनकी, और आपको अल्लाह ताला ने दे चुका है, दे दी मी है। अब आप क्या करिए, जब आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिली, फसल्ली दी और रब्बी का वन हार फा, मैंने आपको क्या बताया था, एज अ रिजल्ट देयर फोर, इसके नतीजे में, जबकि आपको कौसर मिल गई, तो इसके नतीजे में अब आप क्या करें। फसल्ली ली रब्बी का वनहार, बस आप नमाज पढ़ें अपने रब की और कुर्बानी कीजिए, और नमाज पढ़ें, यानी नमाज असल में नेमत के शुक्राने के तौर पे, जब इंसान के अंदर एहसास मंदी का जज्बा हो कि मुझे शुक्र अदा करना है, मेरे रब ने मुझे बड़ा कुछ दिया है, उसका दिल शुक्र अदा करने को चाहता है, तो नमाज उसका एक बहुत बेहतरीन जरिया है। और नमाज के अंदर इंसान की जुबान भी, उसका दिल भी, और उसके तमाम आज़ा शामिल हो जाते हैं। अभी शुक्र की तौफीक भी तो उसको मिलती है ना जो एहसान मंदी का जज्बा रखे, और ये तौफीक मिल जाना जो होता है ना, ये अल्लाह ताला के महबूब होने की अलामत होती है। क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के बारे में देखिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अबदन शकूरा, नूह जो है वो अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार बंदे कैसे थे, कि जब कपड़े पहनते शुक्र अदा करते, खाना खाते शुक्र अदा करते, कुछ भी काम करते शुक्र अदा करते। तो अगर आप एक शुक्र गुजार इंसान है ना, तो ये एक साइन है कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है। जो कुछ आपको मिला है, ये ना समझे ये मेरा हक है, बल्कि ये मेरे रब का करम है, उसकी अता है, उसने दे दिया। हर नेमत जो भी आप सोच सकते हैं, उसमें शुक्र अदा करने की कोशिश किया करें। अल्लाहुम्मा जालना मिन शाकिरीन, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया शुक्र गुजार कलील ही हैं, बहुत कम ही है जो शुक्र अदा करते हैं लोग, और बहुत कम शुक्र अदा करते हैं, नहीं शुक्र जितना करना चाहिए उतना भी नहीं करते। और दूसरा कलील का मतलब क्या, कि बहुत कम अल्लाह के बंदे हैं जो शुक्र करते हैं। तो यहाँ पे शुक्र अदा करने का क्या तरीका बताया गया, सलात, कि पांचों नमाजें तो पढ़नी ही हैं, वो तो फर्ज ही हैं, उसके अलावा भी सुन्नतें पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, तहज्जुदें, इशराक, ये सब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कितनी नमाज पढ़ते थे रात के वक्त, कि आपके पैर मुबारक स्वेल हो जाते थे। तो आयशा रजी अल्लाह तआला ने पूछा था ना कि आप क्यों इतना पढ़ते हैं, अल्लाह तआला ने तो आपके अगले पिछले सब खताएं माफ करें। फरमाया कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो यानी शुक्रगुजारी के लिए आप क्या करते थे, नमाज पढ़ते थे रात को। एमलू आला दाऊद शुक्रा, अमल करो आले दाऊद की तरह, इस तरह अमल करो शुक्र करने के लिए, आले दाऊद को देखो। और देखें दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज और रोजा, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा महबूब था। उनकी नमाज ऐसी होती थी कि आधी रात सोते थे, फिर उसके बाद 1/3 नाइट उठ के इबादत करते थे, फिर 1/6 नाइट फिर सो जाते थे, बीच में उठते थे, और रोजा एक दिन रखते एक दिन छोड़ते। और यहाँ पे नहर का आया, ये ईद के दिन भी जो कुर्बानी है उसको भी आप कह सकते हैं, उसको उसके लिए भी बाज़ उलमा कहते हैं कि यहाँ पे कहा गया। और ये दो इबादत ही क्यों कही गई, इसलिए कि इंसान दो तरह से इबादतें करता है, या तो बदनी इबादत होती है या माली होती है। तो बदनी इबादत में नमाज आ गई और माली इबादत में नहर करना आ गया। और ऊंट इसलिए क्योंकि ऊंट से बहुत सारे लोग खाना खा सकते हैं, और खाना खिलाने की फजीलत हम इतनी दफा पढ़ चुके हैं कि वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब ये दो ही बातें मुशरकीन भी करते थे, लेकिन यहाँ पे कहा गया लियो रब भी का, अपने रब के लिए, यानी किसी और के नाम की नहीं दे सकते कुर्बानी, किसी और के नाम की सदका, किसी और के नाम का ये, कि ये उसके नाम का, नाम अल्लाह का ही होगा। हाँ आप सवाब पहुंचाने के लिए कह सकते हैं, अल्लाह ताला इसका सवाब फला को पहुंचे, लेकिन उसके नाम की है ये नहीं आप कर सकते। मुशरिकीन सजदे और कुर्बानियां दूसरों के नाम की करते थे, तो एक मुसलमान को तो नहीं ऐसा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने तो फरमाया ला तकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैह, मत वो खाओ जिसको पर अल्लाह के नाम ना लिया गया हो, ये फिस्क है। तो इसलिए कुर्बानी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की एक ने एक इबादत रखी है, और अल्लाह ताला के शुक्र का ये भी एक जरिया है। ये शुक्र इन दो तरह से आप अदा कर सकते हैं। और फसली लिल्ला ही नहीं कहा गया, इसलिए कि रब का लफ्ज तब आता है जब अल्लाह ताला की तरफ से कुछ अता होता है। मैंने आपको बताया था जब रब का लफ्ज आया, तो आपने याद करना है कि अल्लाह ताला के एहसानात जो मेरे ऊपर हैं वो जहन में लाए। तो यहाँ पे अता की बात आई ना, तो अल्लाह ताला ने इतना अता किया है, तो उस रब को के आगे नमाज पढ़ो। और रब को मैंने आपको बताया था सैयद और मालिक, आपने याद किया, मुरब्बी और क्या मुनाइम, पांच बातें बताई थी, और अलकय्यम, ठीक है। अगर अभी तक नहीं याद हुआ तो याद करने, रब कौन है, वह सैयदु अल मालिकु अल मुरब्बियु अल मुनाइमु अल-क़य्यिम, ठीक है, और इनके माने भी पता होने चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना शैनी ए क्या हुवल अबतर, शैनी ए वो होता है जो बहुत बदतरीन दुश्मन हो, बहुत बोझ रखने वाला बदतरीन। बेशक आपका दुश्मन जो है हुवल अबतर, वो ही है जड़कटा, वो ही है जो ऐसा होगा कि उसके जड़ कट चुकी होगी। और देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम और अब्दुल्ला थे हजरत खदीजा से, दोनों की वफात हो गई, जिसकी वजह से ये इन्होंने ये बातें की। बाज़ जगह आता है कि एक और मुशरिक था जिसने ये बात की, बाज़ जगह आता है कि अबू लहब ने ये बात की। जो भी था ये सारे दुश्मन ही थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इतनी ज्यादा दुश्मनी थी कि उनको ये भी नहीं था कि ये एक मौका, क्योंकि दुश्मन भी और उसके साथ भी घर के अंदर ये हो जाए तो इंसान उसके लिए भी कुछ दिल में एहसास रखता है, मगर इनके अंदर ये भी एहसास नहीं था। बस इससे अंदाजा लगाएं कि ये कितने ज्यादा बड़े दुश्मन थे, और आगे सूरह लहब हम पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा ये बात सामने आएगी। तो आपने इनसे डील कैसे करना, मैंने आपको बताया कि तीसरी आयत दूसरी से जुड़ी हुई, आपने कैसे इनसे डील करना है, आपने नमाज पढ़नी है और आपने नहार करना है। इनकी नफरतों का आप ना जवाब दें, ना इनके साथ बहसें करें ना झगड़े करें। अल्लाह ताला ने इनको खुद ही अबतर कर दिया, और ये ऐसे जलील हुए कि उसके बाद देखिए इन इनका कोई नाम लेवा नहीं है दुनिया के अंदर के, कोई अपने बच्चे का नाम अबू लहाब रख दे, कोई उसको यानी उसके इसकी तारीफ के साथ बात करें। इब्ने तैमिया कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हर तरह की खैर से कट जाते हैं, यानी रहती दुनिया तक जो भी आपका दुश्मन होगा वो हर खैर से कट जाएगा। आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे दुश्मन हैं जो कि आपके ऊपर बातें करते हैं ऐसी, लेकिन देख ले कि वो ना उनके रिस्क में बरकत होगी, ना उनके खानदान में, उनकी कयामत के दिन उनके खानदान वाले उनसे दूर भागेंगे और उनके लिए अजाब है, अबतर है। अब उनकी फैमिली उनकी खुद ही दुश्मन बन जाएगी, तो ऐसे खानदान को फिर क्या उसका फायदा। तो जिसके भी दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुग्ज़ हो, नफरत हो, उसके नेक अमाल भी उससे कट जाएंगे, उसकी कोई नेकियां नहीं, कोई कबूल नहीं, और हर किस्म की खैर से वो कट गया। अबतर है ना, कटा हुआ, जड़ कटा हुआ। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से नफरत करता उसके लिए भी यही है। तो लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और अल्लाह ताला ने आपके दुश्मनों को दुनिया में भी जलील करा और आखरत में भी वो जलील होंगे। देखिए तिलावत सुनते हैं सूरत की।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك